सहनावतु सहनो भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्
In verse number 14, slok number 14, we get the description of a premi bhakta. Who is this premi bhakta? He is doing upasana. How is he doing upasana? Nitya yukta. Nitya yukta by mind. Manasa, nitya yukta. Namasyanta. Namasyanta, sarir se. And kirtayanta, vak. That means kaya vacha mansa. He is doing the bhakti of Bhagwan. इसके बाद 15वें श्लोक में हम देखते हैं ज्ञानी भक्त की उपासना है. वो कैसे उपासना करता है ज्ञानी भक्त? एक प्रेमी भक्त हुआ, एक दूसरा ज्ञानी भक्त हुआ. ज्ञानी भक्त कैसे करता है? एकत्व है ना, परमात्मा ब्रह्मन एक है, दो नहीं है, एक है. और पृथकत्व है ना, पृथक आदित्य आदि इंद्र आदि की पूजा करना, उसके अंदर भी वो परमात्मा को ही देखता है. और बहुधा विश्वतो मुखम, सारा विश्व ही परमात्मा है, सारा विश्व ही परमात्मा है. फिर 16 से लेकर 19 श्लोक तक भगवान ने बहुधा विश्वतो मुखम की व्याख्या की. सारा भगवान कहते हैं ये सारा विश्व मैं ही हूं. उसके बाद 20वें और 21वें श्लोक में भगवान बताते हैं सकामी भक्त वो क्या करते हैं. वेद में कर्मकांड लिखा हुआ है, वो कर्मकांड करते हैं और कर्मकांड करने के बाद में उसको पुण्य को भोगने के लिए देवलोक जाते हैं या स्वर्ग लोग जाते हैं या पितृलोक जाते हैं और वहाँ जाके उनका सुख का भोग करके फिर वापस आ जाते हैं जैसे ही पुण्य खत्म हो जाता है. तो ये लोग आके फिर ऐसे गतागत चलता रहता है, इनका आना जाना चला रहता है. पुण्य खत्म हुआ फिर आए, फिर पुण्य किया फिर गए, फिर आए, ऐसे चलता रहता है. 22वें श्लोक के अंदर भगवान ने बताया निष्काम भक्त प्रेमी भक्त जो ज्ञानी भक्त है वो क्या करते हैं? वो भगवान का चिंतन करते हैं. प्रेमी भक्त हमने बताया काया वाचा मनसा, और ज्ञानी भक्त एकत्व है ना, परमात्मा या ब्रह्म एक है, या पृथकत्व है ना, या बहुधा विश्व तो मुखम से वो उनकी उपासना करते हैं. तो भगवान क्या कहते हैं कि मैं उनका योग क्षेम करता हूँ, उनको जिस चीज की जरूरत है उसको मैं ला के देता हूँ और जो उनके पास है उसकी रक्षा करता हूँ. दोनों ही भगवान करते हैं. तो केवल उसके लिए ही नहीं करते हैं, उनको जो प्यार करते हैं ऐसे जो भक्त हैं प्रेमी भक्त या ज्ञानी भक्त, उनकी जो सेवा करते हैं या उनसे जो प्रेम करते हैं भगवान कहते हैं उसका भी मैं योग क्षेम करता हूँ. उतना ही नहीं, जो भक्त दूसरों को प्यार करता है, जो भक्त जिस भक्त की जो है भगवान योग क्षेम करते हैं, चाहे वो प्रेमी भक्त हो या ज्ञानी भक्त हो, वो जिसको प्रेम करता है उसका भी योग क्षेम करते हैं. देखो कितना भगवान ख्याल करते हैं. उसके बाद में भगवान अब बताएंगे 23वें श्लोक के अंदर हम देखेंगे भगवान कहते हैं यदि कहो कि अन्य देव भी आप ही हैं अतः उनमें उनके भक्त भी आप ही का पूजन करते हैं तो यह बात ठीक है. ये तो भगवान अपने पूजन के बारे में बता रहे थे कि जो नित्य भक्त हैं और प्रेमी भक्त हैं, निष्काम भक्त और सकाम भक्त जो हैं, सकाम भक्त तो वापस आते जाते रहते हैं, निष्काम भक्त वापस नहीं आता है। तो ये सकाम भक्त जो पूजा करते हैं दूसरे देवताओं की, तो वो क्या भगवान आपकी पूजा है? तो इसका उत्तर भगवान देते हैं,
ये प्यन्न देवता भक्ता हा, ये प्यन्न देवता भक्ता हा, यजन्ते श्रद्धयान्विताः,
यजन्ते श्रद्धयान्विताः,
तेपि मामेव कौन्तेय,
तेपि मामेव कौन्तेय,
यजन्त्य विधिपूर्वकम्,
यजन्त्य विधिपूर्वकम्,
ये प्यन्न देवता भक्ताः, यजन्ते श्रद्धयान्विताः, तेपि मामेव कौन्तेय, यजन्त्य विधिपूर्वकम्।
यहाँ भगवान कहते हैं कि अन्य देवताओं की उपासना को भी प्रकारण से अवधि पूर्वक अपनी उपासना बतलाना। भगवान कहते हैं कि जो दूसरे अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, ये अपनी अन्य देवता, देखो जहां भी गीता में वर्ड देवता आए ना, तो आप समझ लेना ये सब छोटे छोटे देवताओं की वहां बात होती है, सब समय छोटे, यहां परमात्मा की बात नहीं हो रही है। तो जो भी अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, कैसे करते हैं? श्रद्धान्विता, पूरी श्रद्धा के साथ करते हैं, विधि पूर्वक करते हैं। ते अपि माम एव कौन्तेय यजन्ती, ओ कौन्तेय, ओ अर्जुन, वो अगर सही माने में पूछो तो मेरी पूजा ही करते हैं, मगर कैसे करते हैं? अविधिपूर्वकम। अविधिपूर्वकम का क्या मतलब है शंकराचार्य जी बताएंगे, हम देखेंगे उसको। तो ये श्लोक जो है ना, 20वें और 21वें श्लोक में जो सकामी भक्त है ना, उससे जुड़ा हुआ है ये। 20 और 21 श्लोक में हमने सकामी भक्त की बात की ना, जो स्वर्ग जाते हैं कर्मकांड करके, फिर वापस आते हैं, फिर पुण्य करते हैं, फिर स्वर्ग जाते हैं, उनके उनकी बात है। तो ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग जो है श्रद्धापूर्वक जो है दूसरे देवताओं की पूजा करते हैं, मगर वो पूजा अविधिपूर्वक है। पुण्य तो होता है, पूजा की पूजा करने के बाद में उनको स्वर्ग की प्राप्ति भी हुई, मगर फिर वापस आना पड़ता है, या पितृलोक गए या उसके ऊपर हायर लोक में गए, जाके फिर वापस आना पड़ता है उनको। तो अविधिपूर्वक का मतलब क्या होता है? अविधिपूर्वक का मतलब होता है कि उनको ये नहीं मालूम है कि उस छोटे देवता में भी परमात्मा है। शंकराचार्य जी कहते हैं अविधि मतलब अज्ञानम तत्पूर्वकम, अज्ञान पूर्वकम यजन्ते इति अर्थ। इसका मतलब है उनको ये ज्ञान नहीं है कि छोटे देवता के अंदर भी परमात्मा ही बैठे हुए हैं, ये ज्ञान नहीं है। तो ये लोग क्या करते हैं? अपनी श्रद्धान्विता अन्य देवता भक्ता यजन्ते, वो लोग जो है इंद्र वायु राहु केतु इन सब की जो है पूजा करते हैं, मगर इनके अंदर परमेश्वर नहीं देखते हैं। राहु और केतु में भी परमेश्वर बैठे हुए हैं, ये ज्ञान उनको नहीं है, मगर ये सोचते हैं कि ये राहु और केतु की पूजा करने से मेरा काम हो जाएगा, ये इतनी उनकी श्रद्धा है। हमारी समस्या का समाधान जो है वो राहु केतु नवग्रह की पूजा करने से हो जाएगा। बहुत बार आप लोग को पंडित लोग कहेंगे, आप भी जब भी कभी समस्या में जाओगे ना, तो फिर बोलेंगे ये पूजा कर लो, वो पूजा कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। भगवान कहते हैं ते अपि मामेव यजन्ती, भगवान कहते हैं वो श्रद्धापूर्वक करते तो हैं, मगर वो मेरी पूजा है, मगर उनको ये नहीं पता है कि रिजर्वायर मैं हूं, वो तो टैप है टैप। एक एक देवता को मैंने ये कह दिया, आपकी ये पूजा करेगा तो उसको ये काम करना, ये दे देना है, ये इस किस्म से करेगा उसकी ये पूजा कर देना। अब जैसे है, आप मान लो आप इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट में जाओ, अपना एप्लीकेशन दे दो, एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाओ, उनको सब देवता है, वो सब देवता लोग हैं, वो लोग उनकी पूजा करो, उनके विधि नियम के अनुसार जो जो करना है वो कर दो। तो उनको पावर कहां से मिला? उनको पावर प्रेसिडेंट से मिला ना। ये छोटे छोटे जो मिनिस्टर बैठे हुए हैं, आप जानते हो कि हम अपना पेटिशन लेके हम जो है वहां नहीं जाएंगे, प्रेसिडेंट के पास नहीं जाना है। किसके पास जाना है? हमको इंडस्ट्री खोलनी है, इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट जाएंगे, या स्कूल कॉलेज खोलना है तो हम एजुकेशनल डिपार्टमेंट में जाएंगे। तो जो लोग वहां जाते हैं उनको ये नहीं पता है कि इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का जो सेक्रेटरी है या मिनिस्टर जो है, इसके पास पावर आया कहां से। वो सोचते यही मेरा देवता बस है, हमको उसके ऊपर नहीं जाना है। वो अभिधि पूर्व, ये अविद्या है, उनको ये ज्ञान नहीं है कि राहु केतु की पूजा के अंदर भी, राहु के अंदर भी वही तत्व तो बैठा हुआ है, वही भगवान है, वही परमात्मा है। उनका ऐसा जानना है कि हमारी समस्या जो है वो राहु केतु ही ठीक करेंगे, वो परमात्मा नहीं कर सकते, भगवान वासुदेव के पास नहीं जाना है। ऐसा करते हैं हम लोग, ऐसा ये प्रॉब्लम है इसका ये पूजा कर लो, ये प्रॉब्लम है इसका ये पूजा कर लो, ऐसे हम करते रहते हैं। तो मोक्ष के लिए विधि क्या है? मोक्ष के लिए विधि है ज्ञान। मुक्ति अगर आपको लेना है तो ज्ञान। ज्ञान क्या है? सब कुछ वासुदेव है, ये ज्ञान है, सब कुछ वासुदेव। अच्छा बाबू, अन्य देवता में आप वासुदेव नहीं देख रहे हो तो क्या हुआ? ज्ञान हो गया ना। वही अज्ञान को भगवान यहां अभिधि पूर्वक कहते हैं, वही अज्ञान अभिधि पूर्वक हो गया। अब मोक्ष के बारे में हमारे उपनिषद क्या कहते हैं? आत्मा बारे श्रोतव्य मंतव्य निधि, आत्मा के बारे में सुनना चाहिए, उसके ऊपर मनन करना चाहिए, उसी के ऊपर में निधि ध्यासन करना चाहिए। तो वो लोग क्या करेंगे स्वर्ग जाने के लिए? विधि पूर्वक करेंगे सब कुछ, विधि पूर्वक पूजा वूजा करके स्वर्ग जाएंगे, वापस आ जाएंगे। अब चूंकि उनको भगवान के तत्व के बारे में पता नहीं है, कैसे उनका पूजन अभिधि पूर्वक है, भगवान उसको अगले श्लोक में बताते हैं। चूंकि ये नहीं जानते, इस वास्ते उनका पतन होता है। किनका पतन होता है? साकाम भक्त का। कौन है साकाम भक्त? जो कर्मकांड करके जो है ऊंचे लोक में जाता है। क्यों उसका पतन होता है? उसका पतन इसलिए होता है कि वहां पुण्य खत्म हुआ, वापस आना पड़ गया उसको। ये कैसे होता है अगले श्लोक में भगवान बताते हैं।
अहम हि सर्वयज्ञानाम्, अहम हि सर्वयज्ञानाम्, भोक्ता च प्रभुरेव च, भोक्ता च प्रभुरेव च, न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च वन्ति ते अहम हि सर्वयज्ञानां, भोक्ता च प्रभुरेव च, न तु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्च वन्ति ते।
अहम हि सर्वयज्ञानां, भोक्ता च प्रभु एव च। भगवान कहते हैं कि जितने भी आप यज्ञ करते हो उन सबका भोक्ता मैं हूं। भले ही आप राहु केतु की पूजा करो, वो पूजा अल्टीमेटली मेरे पास ही जाती है, क्योंकि मैं ही उनके बीच में बैठा हुआ हूं। एज ए सच्चिदानंद परमात्मा सबके भीतर, हम जानते हैं आत्मा तत्व एक ही है, उनमें मैं ही बैठा हुआ हूं। और प्रभु, मैं प्रभु हूं उनका, हूं लॉर्ड तो मैं हूं, वो तो मेरे मिनिस्टर हैं, छोटे छोटे देवता हैं, मैंने बना के रखा हुआ है, डिपार्टमेंट बना के रखा हुआ है, तो मैं ही प्रभु हूं, मैं ही भोक्ता हूं। न तुमाम अभिजानन्ति तत्त्वेन, वो लोग मेरे को इस तत्व को नहीं जानते। कौन लोग? वही सकामी भक्त। वो क्या करते हैं? छोटे छोटे देवताओं की पूजा करते हैं, मगर उनको ये नहीं पता है कि इन छोटे देवताओं के अंदर वही परमात्मा बैठा हुआ है। न अभिजानन्ति तत्त्वतः, उनको ये नहीं पता है, इसलिए च्यवन्ति ते। च्यवन्ति मतलब गिरते हैं, गिरते हैं मतलब फिर वापस आते हैं। अगर परमात्मा के पास एक बार पहुंच जाओ तो वापस नहीं आना पड़ता है, छोटे देवताओं के पास में जाओगे तो वापस आना पड़ेगा। तो यज्ञ क्या होते हैं? यज्ञ दो किस्म के हैं, स्रोत कर्म अग्निहोत्रादि या स्मार्त कर्म। स्मार्त कर्म आप पांच यज्ञ करते हैं, दीप यज्ञ, ऋषि यज्ञ, नृ यज्ञ, भूत यज्ञ, ये हमने देखा पांच यज्ञ हम लोग को करने पड़ते हैं, ये स्मार्त कर्म है। और भिन्न भिन्न यज्ञ के भिन्न भिन्न देवता हैं। अब जैसे मान लीजिए गणपति होम करना है तो उसके देवता कौन होंगे? गणेश जी होंगे, गणपति होंगे। सर्वयज्ञानाम अहम भोक्ता च प्रभु एव च, सारे यज्ञों का फल मुझे मिलता है क्योंकि सर्वयज्ञों का भोक्ता मैं हूं। आपने अभी हम लोगों ने पांचवा अध्याय खत्म किया था, उसमें भी एक जगह आया था, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। सारे यज्ञों का भोक्ता मैं हूँ, सारे तपसों का भोक्ता मैं हूँ, और मैं सारे लोगों का महेश्वर हूँ, सारे लोगों सारे यज्ञों का स्वामी भी हूँ, और मैं कर्म फलदाता हूँ, सर्व यज्ञों का स्वरूप भी मैं हूँ, सर्व देवताओं का स्वरूप भी मैं हूँ। हर देवता के अंदर कौन है? आत्म तत्व तो एक है, हर देवता के अंदर आत्म तत्व तो एक ही है, तो वही भगवान बैठे हुए हैं वहां पर। तो माम तत्व ने ना भी जानती, मगर उनको ये नहीं पता है कि ये जो हम यज्ञ और तपस जो कर रहे हैं ये सब कैसे वहां जाता है अल्टीमेटली। अरे आप जब इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के अंदर या एजुकेशन डिपार्टमेंट में जब पिटीशन देते हो तो उसको जो दक्षिणा देते हो, उसकी जो फीस देते हो, कहां जाता है? फेडरल गवर्नमेंट को जाता है ना, वो मिनिस्टर तो अपने पॉकेट में नहीं रखता है, कहां जाता है? उसका असली भोक्ता कौन है? असली भोक्ता फेडरल गवर्नमेंट है। मगर नहीं जानने के कारण वो क्या होता है, चबंती थे, गिरते हैं। गिरते मतलब आवागमन, आपस में वापस आते रहते हैं। अगर हम ये इस हिसाब से अगर पूजा करें कि इस छोटे देवता के अंदर भी वही परमात्मा बैठे हुए हैं, तो उसका फल उन्नत होगा, बेटर होगा, बढ़िया होगा। परमात्मा ही उन छोटे छोटे देवताओं में बैठे हुए हैं, ऐसा सोचकर, ऐसा जानकर अगर हम पूजा करें तो उसका फल और अच्छा होगा। जैसे आपको बरसात के लिए, पानी के लिए हम किसकी पूजा करते हैं? वरुण देवता। अगर हम ये जान के करें कि वरुण देवता में भी वही परमात्मा बैठे हुए हैं, तो उसका फल जो है उन्नत होगा और बेटर भी होगा। तो हम क्या करें फिर? अतः सारी कामनाओं के लिए परमेश्वर की पूजा करें, सारी कामनाओं के लिए परमेश्वर से पूजा करें। अगर आपको छोटे देवताओं की पूजा करनी भी पड़े, तब भी ये जानो कि उस छोटे देवता के अंदर परमेश्वर ही बैठे हुए हैं, ऐसा सोच के आपको पूजा करनी चाहिए। तो इससे क्या लाभ होगा? इससे ये लाभ होगा कि हमारा ध्यान उस परमेश्वर की तरफ जाएगा। देखो, राहु केतु से छोड़कर अब आप परमात्मा के बारे में भी कुछ सोचना चाहो, ध्यान उधर भी जाएगा, परमेश्वर की तरफ जाएगा। और उससे क्या होगा? परमेश्वर की तरफ अगर जाएगा ध्यान, तो हम गिरेंगे नहीं। तो ज्ञान जो है वो मुक्ति देता है। देखो, इस ज्ञान से अगर छोटे देवताओं की पूजा करें कि उसके अंदर भी परमेश्वर है, तो उससे जो है वो परमेश्वर हमको जो है देखेंगे। और अगर ज्ञान ना हो तो अज्ञान जो है, अविद्या जो है, वो बांधता है। अज्ञानी लोग गिरते हैं। अज्ञानी मतलब जो साकाम भक्त कहें, जो छोटे छोटे देवताओं की पूजा करते हैं मगर उनको ये ज्ञान नहीं है कि इसके अंदर वही परमात्मा है, ऐसे लोग वापस आवागमन करते रहते हैं। भगवान यहाँ बताना चाहते हैं कि परमेश्वर बुद्धि से आपका मन शुद्ध होता है और परमेश्वर बुद्धि से आप में बदलाव आता है। परमेश्वर बुद्धि से आपका मन शुद्ध होगा और परमेश्वर बुद्धि से आपके अंदर बदलाव भी, चेंज भी आएगा। फिर आप अन्य देवताओं के लिए जो है निश्चित फल देने के लिए बाध्य नहीं करेंगे। जैसे ही आपके अंदर ये बदलाव आएगा कि भाई उस देवता के अंदर भी ये परमात्मा ही है, तो फिर आप एक निश्चित फल देने के लिए बाध्य नहीं करोगे, क्योंकि आपका विजन चेंज हो गया। आगे आप जो है केवल उसको राहु केतु को समझते थे कि भाई ये इंडिपेंडेंट है, उनसे परमेश्वर का कुछ नहीं लेना है। अब आपको ये पता लग गया कि राहु केतु भी जो है वो परमेश्वर से ही उनको जो है कर्म फल देने का अधिकार मिला है। जैसे ही परमेश्वर की तरफ अगर जब ध्यान गया, तो आपको पता लग जाएगा कि परमेश्वर कौन है भाई। अरे भाई, वो तो हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, हमारे हितकारी हैं। वो देखेंगे, अरे ये भक्त तो गलत काम कर रहा है, ये कई जीवन में ये आ रहा है, खाली यहाँ पर सकाम कर करके पुण्य कर्म करके जा रहा है, ऊपर जाता है फिर आता है, ऊपर जाता है फिर आता है। तो भगवान उसके लिए कुछ सोचते हैं फिर। तो दृष्टि के बदलाव से फल में भी बदलाव आ जाता है। अब आप जैसी उपासना करेंगे वैसा फल मिलेगा। तो ये भगवान आपको अगले श्लोक में बताते हैं कि जैसी उपासना करोगे वैसा फल मिलेगा।
यान्ति देवव्रता देवान्, यान्ति देवव्रता देवान्, पितृन् यान्ति पितृव्रताः, पितृन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्याः भूतानि यान्ति भूतेज्याः यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् यान्ति देवव्रता देवान् पितृन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्याः यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्
यान्ति देवव्रता देवान्। जो देवताओं की पूजा पूजने वाले हैं उनको क्या माल प्राप्त होता है? देवता प्राप्त होते हैं, उनको देवलोक प्राप्त हो जाता है। पितृन यान्ति पितृव्रता, पितरों की पूजा करने वालों को पितरों की प्राप्ति हो जाती है, पितृलोक आप पहुंच जाएंगे। भूतानि यान्ति भूतेज्याः, भूतों की पूजने वाले भूतों को प्राप्त हो जाते हैं। और भगवान कहते हैं यान्ति मद्याजिन अपि माम, मेरी पूजा करने वाले मुझको ही प्राप्त होते हैं। तो उन भक्तों का जो भगवान को प्राप्त हो जाते हैं उनका फिर पुनर्जन्म नहीं होता है। भगवान ने आठवें अध्याय में कहा माम उपेत पुनर्जन्म न बीतते, मेरे को प्राप्त करने के बाद फिर पुनर्जन्म नहीं होता है। तो पूजा और उपासना के अनुसार जो है फल मिलता है। एक फल है संसार में वापस आना, दूसरा फल है संसार में वापस नहीं आना, मुक्ति पा जाना। तो हम जैसा हमारा विजन होगा, जैसा हमारी पूजा होगी, जिस भाव से हम करेंगे उसके अनुसार से हमको फल मिलता है। यान्ति देवव्रता देवान्, जिसका संकल्प व्रत विजन ये है कि इंद्र आदि देवताओं की हम पूजा करके हम उनके देवलोक में उनके पहुंच जाएंगे, मगर इंद्र को परमेश्वर नहीं मानते हैं, इंद्र के अंदर वो परमात्मा तत्व है ऐसा नहीं मानते हैं, उनको ये ज्ञान नहीं है कि इंद्र के अंदर भी वही परमात्मा है, तो वो क्या करते हैं, वो इंद्र आदि देवताओं को प्राप्त हो जाते हैं। अब जिस देवता की आप पूजा करोगे उस देवता को आप प्राप्त कर जाओगे। पितृ यान्ति पितृव्रता, जिनका संकल्प यह है कि भाई पितरों तक हमको जाना है, ऐसे बहुत से लोग हैं, अब पितरों तक हमको यहीं तक जाना और ऊपर हमको नहीं जाना है, तो वो जो है श्राद्ध वगैरह जो करेंगे वो क्रियापरायण है और वहां पर पितृ लोग जाके वो लोग सुख भोगते हैं। भूतानि यान्ति भूतेज्या, जो यक्ष और भूत आदि की पूजा करते हैं वो उस लोक में पहुंच जाते हैं, भूतों के और यक्ष के वहां पहुंच जाएंगे। यान्ति मद्याजिन अपि माम, और जो मेरी पूजा करते हैं वो मुझे पा जाते हैं। एक तो ये मतलब हुआ, दूसरा है मतलब इसका कि जो छोटे देवताओं की पूजा करते हुए उनको अगर ये ज्ञान है कि इसके अंदर भी परमात्मा ही हैं, वो भी उनको पा जाते हैं, परमेश्वर को पा जाते हैं। छोटे देवताओं की इस तरह से पूजा करना कि इसके अंदर परमात्मा वो परमेश्वर नहीं है तो आवागमन होता रहेगा। छोटे देवताओं की पूजा कि उसके अंदर भी वही भगवान बैठे हुए हैं, परमेश्वर हैं, तो आप परमेश्वर की याद करते हो तो वो परमेश्वर आपका हित देखता है। ये छोटे देवता आपका हित नहीं देखते हैं, छोटे देवता आपका हित नहीं देखेंगे। आपने विधिपूर्वक पूजा की, उस विधिपूर्वक पूजा का ये फल है, ये ले लीजिए अपना, जाइए आपके इससे आपका विकास होगा कि नहीं होगा, आध्यात्मिक उन्नति होगी कि नहीं होगी, ये नहीं देखते हैं। मगर परमेश्वर बुद्धि से अगर पूजा की जाए तो परमेश्वर फिर देखता है कि नहीं नहीं ये तो मेरा भक्त है, इसका हित हमको देखना है, इसको ये चीज देने से इसका आगे जाके उसकी उन्नति नहीं होगी, तो उसके बारे में सोचते हैं। तो अपनी दृष्टि बदलो, सृष्टि बदल जाएगी, भगवान की उदारता देखो। अन्य देवताओं की पूजा परमेश्वर जानकर पूजा करने से परमेश्वर की प्राप्ति हो जाती है, देखो कितनी बड़ी बात है। आप छोटे देवता की पूजा करो तो उसके अंदर अगर ये जान लो कि ये भी परमेश्वर ही हैं तो उसके अंदर काफी आपको लाभ हो जाएगा। तो अनन्य भक्त बनकर पूजा करना चाहिए, उपासना करना चाहिए। भगवान सर्वज्ञ हैं, वो जानते हैं हमें क्या चाहिए, और अगर छोटे देवताओं की पूजा करनी पड़े तो ये जान के करो कि उसके अंदर भी परमेश्वर हैं, ऐसा जान के करो। अगर परमेश्वर का अज्ञान होगा तो आवागमन चलता रहेगा, छोटे देवताओं के अंदर अगर परमेश्वर का अज्ञान है तो उसको भगवान ने अभिधिपूर्वक आगे कहा। अभिधिपूर्वक मतलब ज्ञानपूर्वक, अज्ञानपूर्वक मतलब आपको ये नहीं पता है कि उस राहु और केतु के अंदर गणेश के अंदर में वही तत्व बैठा हुआ है। इस अज्ञान के साथ में करोगे तो वापस आना है। अगर ये ज्ञान हो जाए कि उसके अंदर भी वही परमेश्वर है तब उसका फल बेटर हो जाएगा। अब भगवान कहते हैं देखो भाई मेरी पूजा अन्य देवताओं की पूजा से सहज है। देखो बहुत बड़ी बात कहने जा रहे हैं भगवान, अन्य देवताओं की पूजा की विधि विधान बहुत लंबा चौड़ा है, हैं? बहुत लंबा चौड़ा विधान है, मगर हमारी पूजा के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। कई जगह तो ऐसा है यज्ञ आदि के अंदर वो बताते हैं कि आपको इस यज्ञ के लिए 3.5 वर्ष की काली गाय का दूध से बना हुआ घी से करना है। लो अब बताओ कहाँ मिलेगा, यहाँ तो रेड काउ मिल्क है, कहाँ ब्लैक काउ मिल्क तो हमने देखा नहीं, यहाँ लिखा होता नहीं है। घी किस काउ के मिल्क का बना है हमको क्या पता है, सफेद का है कि लाल का है कि काले का है कुछ पता ही नहीं है। अब वो यज्ञ तो हम कर नहीं सकते, ऐसा विधि विधान है। भगवान कहते हैं मेरी पूजा बहुत सहज है, मैं घी सोना चांदी ये सब कुछ नहीं मांगता हूं। भगवान कहते हैं कुछ नहीं मांगता हूं, हमारी पूजा कैसे आप कर सकते हो। भगवान कहते हैं अगले श्लोक में 26वें श्लोक में,
पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, यो मे भक्त्या प्रयच्छति, यो मे भक्त्या प्रयच्छति, तदहं भक्तुपहृतम्, तदहं भक्तुपहृतम्, अश्नामि प्रयतात्मनः, अश्नामि प्रयतात्मनः, पत्रं पुष्पं फलं तोयम्, यो मे भक्त्या प्रयच्छति, तदहं भक्तुपहृतम्, अश्नामि प्रयतात्मनः।
भगवान देखो यहाँ पर शंकराचार्य जी बताते हैं मेरे भक्तों को केवल अपुनरावृत्ति रूप अनंत फल मिलता है, इतना ही नहीं किंतु मेरी आराधना भी सुख पूर्वक की जा सकती है। परमेश्वर की आराधना करने से एक तो अपुनरावृत्ति मतलब मुक्ति मिल जाएगी, वापस नहीं आना है, और मेरी पूजा कितनी सहज है। अब कितनी सहज है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये मैं भक्ता प्रेक्षति, जो कोई भी मेरे को देखो एक पत्ता दे दे या पुष्प दे दे, एक फल दे दे या पानी दे दे। अच्छा ये ऐसा नहीं कि चारों दो एक साथ मेरे को, इसके अंदर चौब शब्द नहीं आया कि एंड 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 ये भी दे दो। अच्छा मगर क्या कैसे करना है, भक्त्या प्रयच्छति, प्रयच्छति अर्पण करता है, कैसे करता है भक्तिपूर्वक, केवल आपको भक्तिपूर्वक उसको देना है। तत् अहम भक्तिप्रतम अस्नामी, मैं प्रेम पूर्वक इस तरह से अर्पण किया हुआ जो है उसको मैं खाता हूँ, उसको मैं लेता हूँ, उसको मैं ग्रहण करता हूँ। प्रयतात्मना, प्रयतात्मना उस शुद्ध बुद्धि वाले भक्त को जो मेरे को इस हिसाब से देता है। तो आप पत्र पुष्प फल जल कोई भी एक अर्पण भक्ति पूर्वक कर सकते हैं, दूसरा कुछ तरीका नहीं है कि आपको ये चारों देना है। अच्छा मजे की बात है ये सब के सब भगवान के ही दिए हुए हैं, पत्ता भी भगवान वृक्ष से ले लो, फूल भी मिल जाएगा, फल भी मिल जाएगा। अच्छा भगवान आपने ये नहीं बताया कि शिकागो के अंदर जो है विंटर के अंदर तो न पत्ते होते हैं न फल होता है न फूल होता है, क्या करें। भगवान कहते केवल पानी दे दो, पानी दे दो, हम पानी से भी खुश हैं। हमारे जो शिव जी कैसे हैं, पानी से अभिषेक से ही खुश है, बिल पत्र दे दो पत्ते से खुश हैं वो। या हम अर्चना करते हैं कैसे करते हैं, फूल से अर्चना करते हैं। यहाँ पर जब सब कुछ होता है तो हम पत्ता भी लगाते हैं, आम पत्ता भी लगा देंगे, कलश बनाएंगे उसमें भी पत्ते लगाएंगे, हम पुष्प भी देंगे सजाएंगे भगवान को पुष्प से, पुष्पमाला भी देंगे, फल भी देते हैं उनको। पिछले साल क्या हुआ ना, यहाँ पर जब बहुत ज़्यादा कोरोना हो रहा था तो 8 मई को हम लोग को पूजा करनी थी पादुका पूजा, अब कोई आए नहीं डर के मारे, ना हम बाहर जा पाए ना कोई हमारे यहाँ आए, अब पूजा करनी है, कैसे होगा? तो जो हमारे यहाँ पर फूल थे बाहर उनको लिया हमने, पानी है ही है, अब फ्रूट है नहीं। सच बताता हूँ मैं आपको, फ्रूट नहीं था, ड्राई फ्रूट दिया, जो था दे दिया, हमारे गुरुदेव उसी में खुश थे। तो जरूरी नहीं है कि आपको सब कुछ देना, देखो कितना सहज है। अब बताओ परमेश्वर की पूजा सहज है कि नहीं? दूसरी पूजा के अंदर पंडित जी के पास जाओ कितनी बड़ी लिस्ट मिलती है आपको, देखो फिर उसका एक टाइम आपको बताएंगे, इस टाइम में पूजा करनी है। भगवान कहते देखो हम कुछ भी नहीं चाहिए, तो हम जिससे प्यार करते हैं ना उसे हम देते हैं, तो भगवान भी हमसे प्यार करते हैं, बोले बस थोड़ा सा हमको खाली बस प्रेम दे दो, प्रेम पूर्वक दे दो, जो दोगे भक्ति से दो, हम तुम्हारी भक्ति लेंगे, हम जितने लड्डू यहाँ चढ़ाते हैं आप पूजा करते हैं, भगवान कुछ नहीं देते उसमें से, कुछ नहीं देते, कैसे हमने अर्पण किया वो लेते हैं बस। तो एक ऐसा सुभाषित है, अरण्य संति पत्राणी नद्याम स्वादु उदकानी च संति पादौ च हस्तौ च कथम न आराध्य तेहरी। अरे वहां पर जंगल के अंदर पत्ते लगे हुए हैं, नदियों में पीने का पानी है, आपके पास हाथ और पैर हैं, तो फिर भी आप हरि की पूजा नहीं करोगे? लो सुभाषित ऐसा कहते हैं कि देखो ये सब कुछ है, तुम कुछ करना क्या है, सब कुछ वहां पड़ा हुआ है, वहां से लेके रख देना, इतने तो काम है आपको, और आपके हाथ और पांव हैं, ये भी नहीं करोगे तो फिर कैसे होगा। तो हरि की पूजा के लिए विशेष कुछ नहीं चाहिए, भगवान के उद्यान से पत्रादि लेकर भगवान को ही अर्पण करना है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा आपका, उनको ये केवल देना कैसे, भक्त्या भक्ति पूर्वक देना, बस इतना ही है। देखो समुद्र की पूजा जो है समुद्र के पानी से ही होती है, समुद्र देवता की पूजा समुद्र के पानी से ही होती है, इसी तरह से परमेश्वर की पूजा, उसके उद्यान है ये, उसी की भूमि है, उन्होंने दिया हुआ है, उनके उद्यान से सामान लेके उनको ही ऑफर करना है। अच्छा यहां मजे की बात है, पूजा की कोई विधि भगवान ने यहां नहीं बताई, आप क्या लेके आए भगवान ये नहीं देखते हैं, कोई विधि नहीं बताई, इसको ध्यान रखना। कोई विधि नहीं बताई कि पहले ये करो उसके बाद ये करो, षोडशोपचार पूजा करो, ऐसा करो वैसा करो, एक पंडित को लेके आओ संकल्प करो, कुछ नहीं कहा, केवल भक्तिपूर्व देने को कहा, बस इतना कर दो आप भक्तिपूर्वक आप दे दो। भगवान क्या देखते हैं, भगवान देखते हैं आपने कैसे दिया, अगर देने के टाइम में अगर आपकी आंख के अंदर आंसू आए भगवान उसका कद्र करते हैं, आपकी कैसी भक्ति है, आपने क्या दिया ये नहीं। एक बार महाराजा त्रावणकोर जो है पद्मनाभम की पूजा करते थे, अब राजा हैं, आपको मालूम होगा पद्मनाभम के मंदिर से कितना सोना मिला, सबसे ज्यादा सोना वहां मिला, तो राजा जो है विष्णु सहस्रनाम करता था वो गोल्डन लिप से सोने के पत्तियों से करता था, और पंडित आए कुछ देर के बाद में, उसके बाद में वो सब सोने को हटा दे, वो तुलसी से करता था। तो राजा जो है एक दिन दो दिन देखता रहा कि हम करके जाते हैं, फिर इसको ही हटा देता है, हटा के जो है उसको फिर तुलसी से करता है, तो राजा ने पंडित को झगड़ा कर लिया उसे, उसको डांटा, हटा दिया उसको। तो भगवान ने जो है राजा को स्वप्न दिया कि देखो तुम करते हो सब ठीक है, मगर मेरे को तुलसी से भी बड़ा प्रेम है, तुलसी सॉफ्ट है, नरम है, आई लाइक। और पंडित को स्वप्न दे दिया कि मेरे को सोना भी पसंद है, बहुत भक्तिपूर्वक मेरे को देता है सोना, तुम क्यों सोना हटाते हो। तो दोनों को स्वप्न दे दिया, जो भक्तिपूर्वक आपने जो दिया वो भी मैं ग्रहण करता हूं, भगवान ने कहा यहां, और तुलसी भी भगवान ग्रहण करते हैं। फिर उसके बाद में दोनों में सुलह हो गई कि हाँ भाई ठीक है, आपसे ऐसा नहीं होगा कि आप जो दोगे हम उसको हटा देंगे। तत् अहम भक्ति प्रतम, भक्तिपूर्वक जो भी आप चीज दोगे, अहम अस्नामी, मैं स्वीकार करता हूं, मैं खाता हूं। देखो सुदामा चिड़वा लेके गए, सूखा चिड़वा, भक्तिपूर्वक खा लिया, पोटी से ले लिया, छीन के पोटी से ले लिया, क्या लाया दिखाओ मेरे को। अब वो कपड़ा भी फटा हुआ, अब भगवान के पास गए हैं, वहां पर क्या है, उसमें किसी से मांगा हुआ चिड़वा भी लेके आए, उसी को उठा के भगवान खाने लगे। सबसे बड़ा अर्पण क्या है? सबसे बड़ा अर्पण है आप अपने आप को ही अर्पण कर दो भगवान को। अपने आप को अर्पण कर दो मतलब मैं भगवान आपका सेवक हूँ, आपका दास हूँ, आप जो कहोगे आपके लिए सब कर्म करूँगा। अगले श्लोक में भगवान यही भाव बता रहे हैं।
यत करोषि यदश्नासि यत करोषि यदश्नासि यद जुहोषि ददासि यत यद जुहोषि ददासि यत यत तपस्यसि कौन्तेय यत तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम् तत् कुरुष्व मदर्पणम् यत करोषि यदश्नासि यद जुहोषि ददासि यत यत तपस्यसि कौन्तेय तत् तत् कुरुष्व मदर्पणम्।
अब 27वें और 28वें श्लोक में भगवान ये बताने जा रहे हैं कि आप जो है सारे कर्मों को मेरे को अर्पण करो, भगवान को अर्पण करो, और उसके फल भी बताएंगे। 28वें श्लोक में उसका फल बताएंगे क्या होगा उसे। तो यत करोसी नंबर एक, जो भी आप करते हो, यद अस्नासी जो भी आप खाते हो, यद जुहोसी जो भी आप जो है हवन वगैरह यज्ञ वगैरह जो करते हो, ददासी यद जो भी आप दान करते हो, यत तपस्यसी जो भी आप तपस करते हो, ऑस्टेरिटी है, कौनते या तत्कुरुष्व मदर्पणम, वो सब मेरे को अर्पण करो, मेरे को अर्पण कर दो। अगर आप पत्र पुष्प आदि नहीं दे सकते हो तब भगवान कहते हैं तो मेरी पूजा इस तरीके से भी कर सकते हो, इस तरीके से भी आप पूजा कर सकते हो। रोज रोज आप कौन पत्ता लेके आए, फूल लेके आए, फल लेके आए भगवान को दे, बोला तो नहीं, अच्छा चलो दूसरा तरीका बता देते हैं, ये और बेटर तरीका है। क्या है? यत करोसी जो भी आप करते हो, चलना, सोना, नहाना, लौकिक कर्म, लौकिक कर्मों को भी जो क्या है उसको भी मेरी पूजा समझ के करो कि ये भगवान के लिए हम कर रहे हैं। तो भगवान लौकिक कर्म की भी पूजा ग्रहण करते हैं, लौकिक कर्म जो भी आप कर रहे हो सारा दिन में जो कार्यक्रम है सब करो सब। यत अस्नासी, भगवान अपने खाने की बात नहीं करते हैं, जो आप खा रहे हो, जो आप खा रहे हो उसकी बात कर रहे हैं, उसको भी इस लौकिक कर्म को आप भगवान को अर्पण कर सकते हो। कैसे करते हैं हम? ब्रह्मार्पणम ब्रह्म भी ब्रह्म, खाने के पहले करते हैं ना। अच्छा, भगवान ने कुछ लिया नहीं उसमें से, कुछ नहीं खाते उसमें से, केवल अर्पण उनको करना है, अब उनका प्रसाद हो गया। यज्जुहोसी मतलब वैदिक कर्म, ऊपर दो पहले वाले स्टेप जो थे वो लौकिक कर्म थे, अब वैदिक कर्म, तो आप लौकिक कर्म करो या वैदिक कर्म करो, जो भी कर्म करो वो मेरे लिए करो, सीधी बात यह है। यज्जुहोसी वैदिक कर्म हो गया, शास्त्रीय कर्म हो गया, ददासी यत जो हम दान देते हैं, यत तपस्यसी जो भी हम तपस करते हैं। तो ऐसा करने से क्या होता है, हर क्षण जो है भगवान की पूजा होगी, सारा दिन लौकिक कर्म वैदिक कर्म जो भी करते हो वो भगवान की पूजा होगी। देखो एक बार पत्रम पुष्पम तोयम फलम देने से देखो ये बेटर है कि नहीं। भगवान कहते हैं तत् कुरुष्व मदर्पणम, सर्वकर्म भगवान की खुशी के लिए करो, मदर्पणम। देखो ये गलत काम नहीं, इसको समझ लेना, गलत मतलब समझ लेना कि मैंने चोरी की, किसी को चीट किया, भगवान ये ले लो आप, पाप तुम्हारा, पैसे मेरे हैं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होगा। भगवान की खुशी के लिए, भगवान की खुशी के लिए मतलब मैंने दूसरे को जो है चीट किया, क्या भगवान उसमें खुश होंगे? नहीं, अरे मैं तो उसमें भी बैठा हुआ हूँ, जिसको आपने चीट किया उसके अंदर भी तो भगवान ही बैठे हुए हैं। तो आपने किसी को चीट किया, किसी को गलत काम कर दिया या किसी को उल्टा सीधा कह दिया, तो उससे क्या भगवान खुश होंगे? नहीं, खुश नहीं होंगे वो। तो कौन से कर्म भगवान लेंगे जिससे भगवान खुश हों, भगवान खुश हों। ऐसे ही हम लोग कहते हैं ना, हम पूजा के अंदर कहते हैं ना, कायेन वाचा मनसेन्द्रिय वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतेश्वा वा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायण इति समर्पयामि। जो भी करेंगे काया वाचा मनसा बुद्धि से, जो भी करेंगे भगवान तुम्हारे लिए, ऐसा हम कहते हैं, पूजा में कहते हैं, बस उसके बाद भूल जाते हैं कि ऐसा करना है प्रैक्टिकली जाके, लौकिक कर्म और वैदिक कर्म इस हिसाब से करने हैं हमें, ये हम भूल जाते हैं। तो श्लोक 26 और 27 में देखा कि परमेश्वर की पूजा अति सहज एवं सुलभ है, मगर इसका फल क्या है? अनंत है। इस तरह से पूजा का फल अनंत है। क्या फल है? 28वें श्लोक में भगवान कहते हैं,
शुभा शुभ फलैरेवम, शुभा शुभ फलैरेवम, मोक्षसे कर्म बंधनैः, मोक्षसे कर्म बंधनैः, सन्यास योग युक्तात्मा, सन्यास योग युक्तात्मा, विमुक्तो मामुपैशसि, विमुक्तो मामुपैशसि, शुभा शुभ फलैरेवम, मोक्षसे कर्म बंधनैः, सन्यास योग युक्तात्मा, विमुक्तो मामुपैशसि।
शुभ अशुभ फलै एवं मोक्ष से कर्म बंधने, कर्म बंधन से शुभ अशुभ फल इससे मुक्ति हो जाती है। सन्यास योग युक्त आत्मा, जो सन्यास योग युक्त आत्मा है, विमुक्त माम उपैशसि, उसको जो है मुक्ति हो जाती है, मुझको प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान को अर्पण होते हैं, ऐसे सन्यास योग से युक्त चित्त वाला शुभ अशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और मुक्त होकर मुझको प्राप्त हो जाएगा। एवं, देखो एक एवं वर्ड आया है बीच में, एवं का मतलब है उक्त प्रकार है ना, जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया। पिछले श्लोक में क्या कहा गया कि सहज रूप से आप मेरी पूजा करो। कैसे करो? या पत्रम पुष्पम तोयम फलम कर दो, और सहज चाहिए तो आप जो है यत करोसी, यद अस्नासी, यद जियोसी, यद ददासी, यद तपस्या, कौन थे आपके लौकिक कर्म वैदिक कर्म जो भी हैं वो सारे के सारे मेरी खुशी के लिए आप करो। सन्यास योग युक्त आत्मा, सन्यास योग युक्त आत्मा का मतलब क्या हुआ? तो शंकराचार्य जी कहते हैं, मेरे अर्पण करके कर्म किए जाने के कारण जो सन्यास है, आपने सन्यास के ना अपने लिए नहीं कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? भगवान के लिए कर रहे हो, तो ये सन्यास हुआ। और कर्म रूप होने के कारण जो योग है, ये कर्म रूप है। मैं अपने कर्म को त्याग कर रहा हूँ, भगवान के लिए कर रहा हूँ, अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, इसलिए योग है। उस सन्यास रूप योग से जिसका अंतःकरण युक्त है, अंतःकरण युक्त है, वो सॉफ्टवेयर उसने यहाँ फिट कर लिया है। क्या सॉफ्टवेयर किया है? कि मेरे सारे कर्म भगवान के लिए ही हैं। इसको कहते हैं शंकराचार्य जी, उसका नाम सन्यास योग युक्त आत्मा है, जिसमें सन्यास की भावना है एवं अपने सारे कर्म भगवान को समर्पण करता है। कैसे करता है? कि एक एक करके समर्पण नहीं करना है, एक एक करके करना तो प्रॉब्लम हो जाएगा, समस्या आ जाएगी। बीच बीच में भूल जाओगे, बीच बीच में आप भूल जाओगे कि भई अरे ये तो देना भूल गया मैं, तो आपको क्या करना है? मैं भगवान का हूँ, मैं भगवान का सेवक हूँ, और जो भी करना है भगवान के लिए करता हूँ। नहाना है, खाना है, पीना है, जो भी सारा दिन लौकिक या वैदिक कर्म करेंगे, सबका सब जो है भगवान के लिए है। ऐसा क्यों सोचते हो भाई? ऐसा इसलिए सोचते हैं कि भगवान ने यह शरीर मुझे दिया है और भगवान इस शरीर के मालिक हैं, बीवी बच्चे सब भगवान के रूप हैं, मैंने आपकी शरण ली है, आपका सेवक हूँ, तस्सेव अहम्, मैं आपका हूँ, मैं आपका हूँ, मेरा व्यक्तिगत कुछ नहीं है, यह जीवन भगवान के लिए है, इसी का नाम सन्यास है। सब कुछ जो है हम भगवान के लिए कर रहे हैं। अच्छा, कोई काम कर्म नहीं है, कोई निषिद्ध कर्म नहीं है, सारे नित्य कर्म भी भगवान के लिए है। यह कर्मयोग भक्ति सहित है। कर्मयोग के अंदर भक्ति जुड़ी हुई है। कर्मयोग क्या है? भगवान की खुशी के लिए कर्म करना, उसमें भक्ति आ गई, भगवान आ गए। तो एक भगवान के साथ हमें संबंध बनाना है और संबंध बना के हमको उनको अर्पण करना है। कर्म बंधन ही, कर्म के बंधन से शुभ अशुभ फल ही, शुभ अशुभ फल से उसको मुक्ति हो जाती है। अच्छा, ये देखो, ये भक्त जो है काम में कर्म नहीं कर रहा है, काम में कर्म मतलब सकाम कर्म नहीं कर रहा है, इसलिए पुण्य नहीं है। निषिद्ध कर्म नहीं कर रहा है, इसलिए पाप कर्म नहीं है। काम कर्म सकाम कर्म अपने लिए होता है, हमको स्वर्ग जाना है, वो सकाम कर्म है। गलत काम नहीं कर रहा है इसलिए कोई पाप भी नहीं हुआ। नित्य कर्म भी कैसे करता है? भगवान के लिए करता है, भगवान के लिए करता है, तो इसलिए जो है उसको कर्म फल की चिंता नहीं होती है, भगवान के लिए है। फल किसका है? भगवान को मिलेगा, जो देंगे वो ले लेंगे, ठीक है। प्रसाद बुद्धि जिसको हम कहते हैं, तो अच्छे या बुरे फल का कोई राग और द्वेष नहीं रह गया उसके अंदर में, उसकी वासना नहीं बनती है और चित्त शुद्ध हो जाता है। और वो बाद में क्या होता है, जीवन मुक्त हुआ, फिर विमुक्त, शरीर के छूटने के बाद में मुक्ति। माम उपैश्यसी, मृत्यु के पश्चात विदेह मुक्ति, परमात्मा को प्राप्त हो गया, परमात्मा को प्राप्त। अब इसको हम समराइज करते हैं, देखो तीन पॉइंट है इसके अंदर में। पहला है परमेश्वर की पूजा बहुत सहज है, पत्रम पुष्पम, तो परमेश्वर की पूजा। हम राहु केतु की पूजा की बात नहीं कर रहे हैं, उसके लिए आप पंडित जी के पास जाइए, पंडित जी बताएंगे, ये लिस्ट आपको देना पड़ेगा। भगवान बोलते मेरी पूजा की लिस्ट यही है, पत्रम पुष्पम तोयम फलम, बस। और उनके साथ में एक संबंध बना लो, क्या संबंध बनाए, सेवक बन जाओ, यही सबसे बढ़िया भाव है, दास भाव, हनुमान जी जैसे दास भाव। उसके अंदर आपका ईगो जो है, अहंकार बहुत कम हो जाता है। और सब कर्म जो है भगवान की खुशी के लिए करो। और ये भी जानो कि देखो ये सारी दुनिया तो भगवान की है, भगवान तो पूर्ण है, भगवान को कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान को क्या चाहिए? भक्ति चाहिए, बस, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं चाहिए। आप ये सोचोगे कि मैं इतना रुपए पैसे देके उनका ये इस तरह से पूजा करूँ, वो सब कुछ बेकार है। वो आपने किस भाव से दिया वो देखेंगे, भक्ति खाली देखेंगे। क्षुद्र देवता की उपासना कठिन है, उनकी अपनी विधि है, मगर परमेश्वर पत्र पुष्प पुष्प से ही खुश हैं। परमेश्वर केवल भक्ति देखते हैं, जो कुछ भी हम भक्ति से देंगे वो स्वीकार कर लेंगे, जो कुछ भी देंगे हम वो स्वीकार कर देंगे। और अपने आप को समर्पण कर दो तो भगवान को, इससे सारे कर्म भगवान के लिए हो जाएंगे, यह संन्यास है, इससे जो है बंधन से मुक्ति होगी। और भगवान के लिए कर्म करने से पाप पुण्य नहीं होता है, पाप पुण्य नहीं होता, मन शुद्ध होता है, फिर जीवन शुद्ध, विदेह मुक्ति। अच्छा, अब प्रश्न आता है कि क्या भगवान पक्षपाती हैं, किसी को फेवर करते हैं किसी को फेवर नहीं करते हैं, ऐसी बात है क्या? ये पूछ सकता है ना कि आप जो है केवल भक्त को देखते हो, मेरे को नहीं देखते हो, अभक्त जो है उनके बारे में आप जो है सम नहीं हो। तो इसका उत्तर भगवान जो है 29वें श्लोक में देते हैं।
समोहम सर्वभूतेषु, समोहम सर्वभूतेषु, न मे द्वेष्वस्ति न प्रियः, न मे द्वेष्वस्ति न प्रियः, ये भजन्ति तु मां भक्त्या, ये भजन्ति तु मां भक्त्या, मयि तेषु चाप्यहम्, मैते तेषु चाप्यहम्। समोहम सर्वभूतेषु, न मे देश्वस्ति न प्रियः, ये भजन्ति तु मां भक्त्या, मैते तेषु चाप्यहम्।
देखो भगवान ने एक जगह कहा ना, योग चेम बहाम्यहम्, जो मेरे भक्त होते हैं, प्रेमी भक्त या ज्ञानी भक्त, जो निष्कामी भक्त हैं, उनका भगवान कहते हैं योग क्षेम मैं वहन करता हूँ। तो वहाँ पर एक जो है डाउट आ सकता है कि तब तो भगवान राग द्वेष से युक्त हैं, क्योंकि वे अपने भक्तों को ही अनुग्रह करते हैं और दूसरों को नहीं करते। तो भगवान कहते हैं ये कहना जो है ठीक नहीं है, ये कहना ठीक नहीं है कि मैं अपने भक्तों को फेवर करता हूँ, ऐसा कहना ठीक नहीं है। भगवान कहते सम अहम सर्वेतु, न मे द्वेष अस्ति न प्रिय, मैं सब भूतों में सब प्राणियों में मैं जो है सम रूप से हूं, सबके अंदर हूं, मेरा किसी से द्वेष भी नहीं है, मैं किसी से किसी को प्रिय भी नहीं हूं। ये भजन्ति तु माम भक्ता मई ते तेषु च अपि अहम्, मगर जो मेरे को भक्ति से पूजन करता है, पूजा करता है, तेसु मई, उसके अंदर मैं हूं, और वो मेरे में है, उसके अंदर मैं हूं और मैं वो मेरे में है, ऐसा हो जाता है। तो मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूं, न कोई मेरा अप्रिय है और न प्रिय है, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूं। तो सर्वभूतेषु समाहम, भूतेषु माने भक्त अभक्त दोनों में समान रूप से भगवान है, ऐसा नहीं है कि अभक्त के अंदर भगवान नहीं है, उसमें भी भगवान है। न द्वेष अस्ति न प्रिय अस्ति, भगवान की दृष्टि में कोई भी प्रेम अयोग्य नहीं है, कोई प्रेम अयोग्य नहीं है। मेरे अभक्त से द्वेष अथवा भक्त से प्रेम भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि अभक्त जो है उससे मैं द्वेष करता हूं, ऐसा नहीं है। भगवान आपने भक्तों के बारे में योग क्षेम भाव में कहा, उनको मुक्ति देते हैं, इसको आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? आपने तो अभी कहा योग क्षेम भक्तों का मैं करता हूं। तो भगवान कहते हैं मेरे लिए सब बराबर है, मगर जो मेरी भक्ति पूर्वक पूजा या उपासना करते हैं तो उनमें मैं हूं और वो मुझ में है, ऐसा भगवान कहते हैं। तो क्या होता है ये? भगवान कहते हैं देखो, उनकी भक्ति के कारण भक्तों में कुछ होता है, भगवान नहीं कुछ कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि भक्तों को फेवर कर रहे हैं या भक्त को जो है द्वेष कर रहे हैं। भगवान कहते हैं जो भक्त हैं वो जब भक्ति करते हैं तो उनके मन में कुछ होता है, उनके मन में कुछ होता है। भक्ति कारण उनका मन शुद्ध होता है और शुद्ध मन के अंदर मैं प्रकाशित हो जाता हूं, मेरा कुछ करने का नहीं है, मैं कुछ नहीं करता। जहां मन शुद्ध हुआ मैं प्रकाशित हो जाता हूं। तो आप ऐसा नहीं समझना कि मैं भक्तों को फेवर करता हूं, भक्त ने प्रयत्न किया, उसने भक्ति की, उसके प्रयत्न से उसका मन शुद्ध हुआ, जैसे मन शुद्ध हुआ वह मैं प्रकाशित हो जाता हूं। अब वह मुझसे दूर नहीं है, वो भक्त मुझसे दूर नहीं है, और आप कहां हैं? मैं उसके उसमें हूं, मैं उस भक्त के पास हूं। वो उस भक्त कैसा है? मत चित्त मत पर भक्त है। देखो अच्छी तरह समझना, भगवान कहते हैं मैं दौड़कर उनमें नहीं घुसा, मैं दौड़कर भक्त में नहीं घुसा, भक्त मेरे में आ गए, मैं उनकी वृत्ति में प्रतिफलित हो गया, मैं शुद्ध मन में प्रतिबिंबित हो गया, उनकी वृत्तियों में प्रतिबिंबित न होने का मेरे पास में उपाय नहीं है, चॉइसलेस एंट्री है ये। भगवान ने कुछ नहीं किया, आपने भक्ति की, आपका मन शुद्ध हुआ, जैसे ही मन शुद्ध हुआ उसमें प्रतिबिंबित हो गई हो, ये चॉइसलेस एंट्री है, कुछ नहीं कर सकते भगवान। मेरा द्वेष व प्रेम किसी से नहीं है, प्रेमी भक्त ऐसा हो जाता है कि मुझे उसमें फंसना, प्रतिबिंबित होना या प्रकाशित होना पड़ता है। आई हैव गॉट नो चॉइस, होना पड़ता है मुझे। ते में ही बरतते, भक्त अब केवल मेरा चिंतन करता है, अब संसार का चिंतन नहीं कर रहा, इसलिए वो भक्त जो है मत चित्त मत परा, मत परा मतलब मैं उसके लिए परम हूं, गोल वही है, मत चित्त उसका मन कंटिन्यूसली मेरे पास है। आपको याद होगा प्रेमी भक्त का क्या करता है, काया बचा मनसा, याद है ना, आज शुरू में ही हमने बताया, काया बचा मनसा निरंतर भगवान का चिंतन करता है। अहम च अपितेषु, उनका मन शुद्ध हुआ और मेरे पास चॉइस नहीं है, मेरे को वहां पर प्रतिबिंबित होना ही पड़ता है। आप वेदांत की दृष्टि से देखो, हमने देखा है कि इदम वृत्ति अहम वृत्ति है और वहां पर शुद्ध अहम भी है। आपने मन शुद्ध किया, मन शुद्ध किया मतलब इदम वृत्ति गई, अहम वृत्ति गई, अहम वृत्ति ईगो है, ईगो भी गया, अब क्या रह गया? शुद्ध अहम रह गया। भगवान के पास कोई चॉइस है? हमने जहां मन शुद्ध कर लिया, खत्म हुआ हमारा मन, अब क्या होगा? अब वो क्या, किसका चिंतन कर रहा है, उसकी इदम वृत्ति क्या है? भगवान है, भगवान है, भगवान है, तो भगवान तो वहां प्रकाशित हो ही जाएंगे। भगवान कहते हैं मैंने कुछ नहीं किया, भक्त के प्रयास से मन शुद्ध हुआ, और जैसे स्फटिक के सामने जो रंग की वस्तु ला दो वो स्फटिक ग्रहण कर लेता है, उसी तरह से उसके शुद्ध मन के अंदर मैं तो वहाँ उपस्थित हूँ, उसके अंदर प्रतिबिंबित हो जाता हूँ, तो वो भक्त मेरे में है और मैं उसके अंदर में हूँ। अच्छा, ये अर्जुन, भक्त को जो अनंतपन मिलता है वह भक्त की महिमा मेरी नहीं है, वह महिमा मेरी नहीं है, वह अनंत फल मिल गया उसको, भगवान मिल गए, मेरी महिमा नहीं है। भक्त ने प्रयास किया, क्या प्रयास किया, क्या प्रयास किया, पत्रम पुष्पम तोयम फलम किया, और उसके बाद में यद अश्नोसी यद यहाँसी यद दासी यद वो किया, ये भक्त का उन्होंने कहा ये आपको पूजन करना है, कोई विधि नहीं है, कुछ नहीं है, बस इतना आप करते जाओ, जहाँ मन शुद्ध होगा वो भगवान प्रतिबिंबित हो जाएंगे। ऐसा नहीं कि भगवान आएंगे आप प्रकट हो जाएंगे भीतर में, ऐसा नहीं होता है, जैसे मन शुद्ध हुआ भगवान तो ऑलरेडी हैं, परमेश्वर हमारे भीतर हैं, केवल प्रतिबिंबित हो जाएंगे आपको लगा रहे हाँ हमको मिल गए वो भगवान। तो शंकराचार्य जी एक अग्नि का उदाहरण देते हैं, जैसे जो व्यक्ति जो है अग्नि के नज़दीक होता है उसको उष्णता मिलती है, जो जितना दूर होगा उसको ताप कम मिलेगा। अब ये भक्त क्या करता है, दिन रात भगवान का ही चिंतन करता रहता है, तो वो भगवान के नजदीक है कि नहीं है। अब भक्त क्या करता है, भगवान का चिंतन नहीं करता है, भगवान तो बहुत दूर है। इस तरीके से भगवान कहते हैं अर्जुन, इसमें मेरी विशेषता या राग द्वेष के प्रति ऐसा नहीं है, यह भक्त की विशेषता है, मेरा राग द्वेष नहीं है कुछ इसमें, ऐसा नहीं है कि मैं उसको फेवर करता हूँ भक्त को इसलिए उसका योग से मैं करता हूँ, ऐसा नहीं है, ये उसका भक्त का प्रयत्न है, उसने अपने मन को शुद्ध कर लिया, मेरे पास में अब कोई चॉइस नहीं रह गया, उस शुद्ध मन के अंदर हमको प्रतिबिंबित होना ही होना है। आपको जैसे वेदांत के अंदर आपको पता होगा कि अगर आपको उस चेतन से मिलना है तो कहाँ जाना होगा, बुद्धि में जाना होगा, मन में जाना होगा, आपने वेदांत में पढ़ा होगा, उसका निवास स्थान कहाँ है, कहाँ परमात्मा से मिलेंगे, कहाँ ब्रह्मन से मिलेंगे, तो आपको वहाँ जाना है, क्योंकि वहाँ प्रतिबिंबित होता है, वो मन में प्रतिबिंबित होता है। मन क्या है, मन के अंदर जो है वृत्तियाँ हैं, कौन सी वृत्तियाँ हैं, अहम वृत्ति इदम वृत्ति है, ये दोनों की दोनों जड़ वृत्तियाँ हैं, उनको प्रकाशित कौन करता है, वही चेतन बैठा हुआ है वहाँ पर। जब तक ये वृत्तियां रहती हैं तब तक वो चेतन समझ में नहीं आता है, जहां वृत्तियां खत्म होगी चेतन प्रतिबिंबित हो जाएगा। हम ध्यान में क्या करते हैं, उन वृत्तियों को हटाने की चेष्टा करते हैं, इदम वृत्ति और अहम वृत्ति को हटा दो, चेतन वहां है, और कुछ नहीं करना है, वृत्तियों को हटाना हमारा काम है, चेतन अपने आप प्रतिबिंबित हो जाएगा, स्पष्ट दिखाई पड़ेगा।
पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।